नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमेल कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदला। मूसलाधार बारिश के पूर्वानुमान के बाद पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट टीआरपी गेम जोन में आग लगने के मामले में 7 अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हुई। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सेंसेक्स पहली बार 76,000 के पार, निफ्टी भी अब तक के उच्चतम स्तर पर। और भारत ने एफआईएच हॉकी प्रो लीग मुकाबले में अर्जेंटीना को 4-5 गोल से पराजित किया। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भीषण चक्रवाती तूफान रेमेल कमजोर पड़कर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। आज सुबह ये चक्रवाती तूफान में बदल गया और बांग्लादेश के मंगला से करीब 24 किलोमीटर दूर केंद्रित था। इसका केंद्र कोलकाता से 90 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है तथा अब यह असम और मेघालय की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि पश्चिम बंगाल में मौसम अब सामान्य होता जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के पूर्वी जिलों में कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। आज अत्यधिक वर्षा का कोई पूर्वानुमान नहीं है।
वेस्ट बंगाल में आज भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है और कल से क्लियर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, स्पेशल अगेंस्ट वेस्ट बंगाल। और आसाम मेघालय एरिया में अभी बारिश बढ़ रहा है। अभी आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा एरिया के लिए हम रेड अलर्ट वार्निंग दिए हैं, जहां की हम हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी 20 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश होने का संभावना है।
चक्रवात रेमेल पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने कहा कि मौसम विभाग से मौजूदा जानकारी के अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान की तीव्रता अब कम हो गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हवा की गति, जो पहले लगभग 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो घटकर अब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। श्री शाहिदी ने कहा कि यह एक बड़ी राहत है और उम्मीद है कि आज शाम तक स्थिति और बेहतर हो जाएगी।
जो हमें जानकारी मिली है, एक डेथ की रिपोर्ट आई है कलकत्ता से, जिसमें एक वॉल कोलैप्स के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसके अलावा ज्यादातर जो है वो पेड़ के गिरने की खबर है। तकरीबन 200 पेड़ अलग अलग जगहों पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके वजह से ब्लॉकेज हुआ है और रेस्टोरेशन वर्क एनडीआरएफ और जो अन्य एजेंसीज हैं स्टेट की, इनके माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, इसमें मेन एरियाज हैं जो अफेक्टेड हैं, उसमें साउथ 24 परगना है, ईस्ट मेदिनीपुर है, कलकत्ता है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड बताए जा रहे हैं और रेस्टोरेशन भी इसमें चल रहा है। इसमें एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं और एसडीआरएफ स्टेट की भी 6 टीमें की तैनाती की गई है।
इस बीच मूसलाधार बारिश के पूर्वानुमान के बाद पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण और उत्तर 24 परगना के तटीय क्षेत्र तथा सुंदरबन क्षेत्र में बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। एक रिपोर्ट।
कोलकाता, हावड़ा, हुगली, 24 परगना और नादिया में बारिश हो रही है और कम गति से हवाएं चल रही हैं। सुंदरबन के इलाकों में जल भराव हो गया है और पानी बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। दूसरी ओर दक्षिण खंड और बारासत हसनाबाद लाइन पर सियालदह की रेल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, लेकिन हावड़ा संभाग की हावड़ा अमता रेल लाइन की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। हालांकि दक्षिणेश्वर और गिरीशपाद के बीच छोटी मेट्रो रेल सेवाएं संचालित की जा रही हैं। कोलकाता और दक्षिण तथा उत्तरी 24 परगना जिलों में कई पेड़ उखड़ गए हैं और लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया है। कोलकाता, बशीरहाट और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के लिए होने वाले अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का काम भी प्रभावित हुआ है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रिका जोशी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवात रेमेल से निपटने के लिए कल एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को बताया गया कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति पश्चिम बंगाल सरकार के साथ नियमित संपर्क में है। भारतीय तटरक्षक किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रखे हैं। इस चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। ओडिशा में विधानसभा की 42 सीटों के लिए होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक ने केंद्रपाड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बरुआ में एक जनसभा की। प्रतिष्ठित केंद्रपाड़ा संसदीय क्षेत्र में 2 बार के लोकसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा और बीजू जनता दल के अंशुमान मोहंती के बीच मुकाबला है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए इस सप्ताह ओडिशा का दौरा करेंगे। श्री अमित शाह कल ओडिशा में चांदबाली, कोरई और नीमापारा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस महीने की 29 तारीख को ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस महीने की 30 तारीख को सिमुलिया में लोगों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 4 जून को 400 से अधिक सीटें हासिल करेगा और नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। श्री मऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने यह बात कही। आज बाद में श्री शाह बलिया और वाराणसी में जनसभा करेंगे। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर और चंदौली में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल, महागठबंधन और अन्य दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के खुसरूपुर में एक जनसभा में कहा कि एनडीए सरकार हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। वो पाटलिपुत्र और आरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पालीगंज और आरा में भी जनसभाएं करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के घोसी में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर संविधान खत्म करना चाहती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पटना के मनेर में जनसभा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव अधिकारियों ने लगभग 95 करोड़ रुपए की नकदी और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। प्रदेश के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए शनिवार को मतदान सम्पन्न हुआ था। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम पश्चिम बंगाल की जयनगर लोकसभा क्षेत्र के विषय में जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
जयनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण के अंतर्गत 1 जून को मतदान होगा। इस निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। जयनगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इस सीट पर 4 निर्दलीय समेत 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस क्षेत्र में 18,40,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 9,03,184 महिला मतदाता हैं। जयनगर की सीट पर वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस की सांसद प्रतिमा मंडल को उनकी पार्टी ने दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कंडारी और वाम मोर्चा के उम्मीदवार रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के समरेंद्र नाथ मंडल हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व देश का गर्व।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात सरकार ने राजकोट में टीआरपी गेम जोन में आग लगने के मामले में 2 पुलिस अधिकारियों समेत 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने काम में कथित लापरवाही के लिए 7 अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। गुजरात सरकार ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शनिवार को हुई इस दुर्घटना से कम 30 लोगों की मृत्यु की आशंका है। घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत में श्री केजरीवाल के अंतरिम जमानत की समाप्ति पर उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन बढ़ाने की याचिका दाखिल की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि आध्यात्मिक रूप से सबल होना ही वास्तविक सशक्तिकरण है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में ब्रह्मकुमारी संगठन द्वारा आयोजित एक समारोह में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के राष्ट्रीय समारोह को संबोधित करा। राष्ट्रपति मुर्मू ने युवाओं में आध्यात्मिक मूल्य जगाने की दिशा में ब्रह्मकुमारी परिवार की सराहना की है।
मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें देश विदेश के युवाओं की भागीदारी रहती है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही वास्तविक सशक्तिकरण होता है।
नोएडा में आकाशवाणी के 64 वर्षीय एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जनक देवशाह को कल एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। नोएडा पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। आकाशवाणी की महानिदेशक ने जनक देवशाह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री नेहरू का स्मरण किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी सहित कई अन्य लोगों ने भी श्री नेहरू की 60वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली के शांतिवन स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज अपने अब तक के उच्चतम स्तर 76,000 के आंकड़े पर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में तेजी के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी नई ऊंचाई पर पहुंचा। दोपहर के कारोबार में 30 शेयरों वाले बॉम्बे शेयर बाजार में सूचकांक 599 अंक चढ़कर 76,009.68 के शिखर पर पहुंच गया। निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,111 के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा। बेल्जियम के एंटवर्प में एफआईएच हॉकी प्रो लीग मुकाबले में भारत ने अपने चौथे मैच में अर्जेंटीना को 4-5 गोल से हरा दिया है। हरमनप्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल जबकि अरायजीत सिंह हुंदाल और गुरजंत सिंह ने 1-1 गोल किए। भारत का अगला मुकाबला 1 जून को जर्मनी से होगा। राजस्थान के लोगों को भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से निजात नहीं मिल रही है। कई जगहों पर तापमान ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पिछले 24 घंटों में फलौदी में अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है, इसलिए बड़ी संख्या में सैलानी कश्मीर घाटी की ओर गर्मी से बचने के लिए पहुंच रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भीषण चक्रवाती तूफान रेबेल कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदला। मूसलाधार बारिश के पूर्वानुमान के बाद पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट टीआरपी गेम जोन में आग लगने के मामले में 7 अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हुई। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। और सेंसेक्स पहली बार 76,000 के पार, निफ्टी भी अब तक के उच्चतम स्तर पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।